आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। लेबर सांसद जॉश बर्न्स का कहना है कि बोंडाय हमले के बाद चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश के नतीजे दिखने लगे हैं। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सबसे चर्चित न्यू नाजी समूह ने खुद को भंग करने की घोषणा कर दी है। अगले हफ्ते संसद में बहस के लिए पेश होने वाले प्रस्तावित कानूनों के तहत नफरत फैलाने वाले ऐसे समूह जो आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने की तय सीमा से नीचे है पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ढांचा बनाया जाएगा। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने संकेत दिया है कि इन सुधारों के तहत हिजबुत तहरीर और नियोनाजी नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क को सूचीबद्ध किया जा सकता है। वहीं नेशनल्स पार्टी के सेनेटर मैट कैनोविन ने कहा है कि वे इन कानूनों का समर्थन नहीं करेंगे। उनका तर्क है कि इससे सरकार की प्रवासन नीतियों की आलोचना दबाई जा सकती है। दूसरी ओर विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने बताया कि राज्य में लगी भीषण बुशफायर से प्रभावित समुदायों और व्यवसायों के लिए फेडरल और राज्य सरकार की ओर से लगभग 100 मिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी। इस पुनर्वास पैकेज के तहत 15 मिलियन डॉलर सामुदायिक रिकवरी अधिकारियों की नियुक्ति और रिकवरी हब स्थापित करने पर खर्च किए जाएंगे। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से प्रभावित परिवारों के लिए 16 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक उत्पादकों के लिए शुरुआती तौर पर 40 मिलियन डॉलर के अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय सरकारों को साफ सफाई और स्थानीय मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए लगभग 12 मिलियन डॉलर मिलेंगे जबकि प्रभावित समुदायों के लिए वित्तीय परामर्श सेवाओं पर 4 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित समुदायों को जल्द से जल्द उबरने में मदद करने की है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी ऑस्ट्रेलियाई लेखिका रांडा अब्देल फतेह ने कहा है कि उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मालिनोस्किस को मानहानि से जुड़ा एक औपचारिक कंसर्न्स नोटिस भेजा है। एडिलेड राइटर्स वीक 2026 से आमंत्रण वापस लिए जाने के बाद उपजे विवाद के बीच ये मामला और गहरा गया है। डॉक्टर अब्देल फतेह का कहना है कि कार्यक्रम से हटाए जाने के बाद वाले सप्ताह में प्रीमियर मालिनोस्किस ने उनके चरित्र को लेकर सार्वजनिक रूप से कई टिप्पणियां की थी। डॉक्टर अब्देल फतेह के वकील माइकल ब्रेडली ने कहा कि ये नोटिस प्रीमियर को गलती सुधारने का अवसर देता है और जोर दिया कि डॉक्टर अब्देल फतेह समाधान के लिए तैयार हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीमियर मालिनोस्किस ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस तरह का कोई कंसर्न्स नोटिस मिलने की जानकारी नहीं है। वहीं जलवायु निगरानी समूह कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने पुष्टि की है कि वर्ष 2025 अब तक का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है। ये रुझान 2026 की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया में आग और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण और ध्यान आकर्षित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2025 में वैश्विक सतह वायु तापमान औद्योगिक पूर्व स्तर से औसतन 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अब तक लगातार 3 वर्षों से औसतन तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 2025 के दौरान समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जिसके चलते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट और ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग देखी गई। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के प्रमुखों जिनमें ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलॉक भी शामिल हैं ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। ये समर्थन ऐसे समय पर है जब ट्रंप प्रशासन ने उन्हें आपराधिक आरोपों की धमकी दी है। पावेल ने रविवार को बताया कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक को न्याय विभाग की ओर से सबपीना आया है। ये समन फेडरल मुख्यालय के नवीनीकरण से जुड़े मामले उन बयानों को लेकर है जो उन्होंने कांग्रेस के सामने दिए थे। एक साझा बयान में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और 9 अन्य संस्थानों के प्रमुखों ने कहा कि पॉवेल ने ईमानदारी के साथ काम किया है और बाजार व कीमतों की स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है। बयान में यह भी कहा गया कि यह जांच दरअसल केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बनाने का बहाना है, जिसकी मांग डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से करते आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस मुद्दे पर हो रहे विरोध या प्रतिक्रिया से वे चिंतित नहीं हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के निवासियों ने वाशिंगटन में होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत से पहले ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता पर चल रही चर्चाओं को अस्थायी रूप से रोकने की मांग की है। यह अपील ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड में रुचि और गहरा रही है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों के विदेश मंत्री अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक उस पृष्ठभूमि में हो रही है जब ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर फिर से धमकी भरे बयान सामने आए हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। कई ग्रीनलैंड वासियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अमेरिका की संभावित दखलंदाजी या नियंत्रण से आर्कटिक द्वीप की संप्रभुता और भविष्य पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी की आशंका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आयोग के अनुसार 65 लाख से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन लगभग आधे मतदाताओं तक पहुंचे नहीं है। जिन नोटिसों की डिलीवरी हुई उनमें भी केवल 40% मामलों की ही सुनवाई हो सकी है, जबकि 74 लाख से ज्यादा मामले अभी लंबित हैं। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में देरी सबसे अधिक है, जिसमें 14 फरवरी तक अंतिम सूची जारी होना मुश्किल माना जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। इसी के साथ 14 जनवरी 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।